بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عبدالعزیز حسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول اللہ، والذین معه اشد ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، وہی وہ ایشور ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سبھی دھرموں پر پربھتو پردان کرے، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی پریاپت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے اتیانت کڑے اور آپس میں اتیانت دیالو ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ ایشور کے سمکش جھکے ہوئے اور نتمستک ہو کر اپنے پالنہار سے انگراہ اور دیا و کرپا کے اچھک ہیں۔ اتیادھک سجدوں کے کارن ان کے چہروں پر سجدوں کے چنھ ہیں۔ ان کی یہی وشیشتا توریت میں ہے اور ان کی یہی وشیشتا انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے اپنا انکر نکالے، پھر اسے سشکت بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جائے کہ جو کھیتی کرنے والوں کو بھانے لگے تاکہ ان کے مادھیم سے کافروں کو جلایا جائے، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کرم کرتے رہے ان سے اللہ نے کشما اور مہان پرتیفل کا وعدہ کیا ہے۔
دوستو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ دوستو، آج منگلوار ہے، بہمن ماہ کی 5، جماعت الثانی کی 22 اور جنوری کی 25 تاریخ۔ ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اوپرانت راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے اوپرانت آپ سنیں گے کاریکرم فلسطین مدعا اور سمادھان، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا قرآنی قصے۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ کچھ کھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ودیش منتری کا کہنا ہے کہ امریکہ سے سیدھی وارتا کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ وینا وارتا میں پرگتی کے اشارے مل رہے ہیں۔ یمن پر سعودی گٹھ بندھن کے حملے تیز، یمن نے حملہ واروں کو کیا سچیت۔ رام مندر کے مکھیہ پروہت کا کہنا ہے کہ اچھا ہوا یوگی ایودھیا سے چناؤ نہیں لڑے۔ اور اب آپ مریم مہردادی اور اختر عباس سے وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گڑتنتر ایران کے ودیش منتری نے ایران اور امریکہ کے بیچ سیدھی وارتا کے بارے میں کہا کہ امریکی نرنتر سیدھی وارتا کی مانگ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اب تک سیدھی وارتا کے لیے کوئی انتم فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے ایران اور پڑوسی دیشوں کے انترگت آیوجت کانفرنس کے اوسر پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ودیشی سمبندھوں کی پریدھی میں پورب اور پشچم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن سوادھینتا کے میدان میں نہ پورب اور نہ پشچم کی نیتی پوری طرح اپنی جگہ باقی ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کے ودیش منتری نے ایران اور امریکہ کے بیچ سیدھی وارتا کے بارے میں کہا کہ امریکی نرنتر سیدھی وارتا کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اب اس پرینام پر نہیں پہنچے ہیں۔ ودیش منتری نے کہا کہ اگلے سپتاہ وہ بھارت اور شری لنکا کا دورہ کریں گی۔ ودیش منتری نے اپنے بھارت دورے کے لکشوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بھارتی سمکش نے پچھلے 4 مہینے میں 2 بار ایران کا دورہ کیا، اور دوسرے یہ کہ بھارت کے ساتھ ہمارے اچھے راجنیتک اور آرتھک سمبندھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور بھارت کے بیچ وبھن راجنیتک اور آرتھک کھیتروں میں سہیوگ جاری ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کے ودیش منتری نے اس دوران اپنے ایک ٹویٹ میں بھارت کے گڑتنتر دیوس کے اوسر پر بدھائی دیتے ہوئے نئی دہلی کے ساتھ ویاپک سمبندھوں میں وستار پر بل دیا۔
ایران کے سروچ راشٹریہ سرکشا پریشد کے سچیو نے کہا ہے کہ وینا وارتا میں موجود امریکی پرتندھی کے ساتھ ایرانی وارتا کار ٹیم کے سمپرک غیر سرکاری لکھت آدان پردان کے روپ میں انجام پائے ہیں۔ ہمارے پرتندھی کی رپورٹ کے انوسار ایران کے سروچ راشٹریہ سرکشا پریشد کے سچیو علی شمخانی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وینا میں موجود امریکی پرتندھی سے اب تک جو بھی سمپرک ہوئے ہیں وہ غیر سرکاری اور لکھت آدان پردان کے روپ میں رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پرکار کے سمپرک کیول اسی سمے ہی دوسرے طریقوں کے وکلپ بنتے ہیں جب اچھے سمجھوتے تک پہنچ سمبھو ہو۔
वियना में जारी वार्ता में शामिल होने के लिए अमरीका द्वारा भेजी गई टीम के वरिष्ठ वार्ताकार रिचर्ड नेफ्यू इस टीम से बाहर निकल गए हैं। नेफ्यू के बारे में अमरीकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब वो वार्ताकार टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय के कर्मचारी के रूप में काम करते रहेंगे। अधिकारी ने यह नहीं बताया कि नेफ्यू वार्ताकार टीम से बाहर क्यों निकल गए, लेकिन मीडिया में अटकलें हैं कि वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शैली के बारे में अन्य वार्ताकारों से उनका मतभेद था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान के मामले में अमरीका की वार्ताकार टीम के भीतर मतभेद पैदा हो गए, जिसके चलते नेफ्यू को इस टीम से बाहर निकाल दिया गया है। नेफ्यू जोर दे रहे थे कि वार्ता में कड़ाई बरती जाए। नेफ्यू इस समय टीम से बाहर निकले जब अमरीकी और यूरोपीय अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि परमाणु समझौते को बचाने के लिए अब कुछ ही हफ्तों का समय बचा है। लगभग दो महीने पहले वियना में यह वार्ता एक अंतराल के बाद शुरू हुई और इस वार्ता का आठवां दौर चल रहा है।
वियना में इस्लामी गणतंत्र ईरान और पांच देशों के बीच मसौदे के बड़े महत्वपूर्ण भाग के बारे में बातचीत आगे बढ़ रही है। रूस के वार्ताकार ने कहा कि वार्ता के अंतिम दस्तावेज के सबसे महत्वपूर्ण भाग में वार्ताकारों ने बातचीत को आगे बढ़ाया। मिखाइल ओलियानोफ ने, जो वियना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस के राजदूत और वियना वार्ता में रूस के प्रतिनिधि हैं, सोमवार को ट्वीट किया कि आज भी वार्ताकारों के बीच मसौदे के महत्वपूर्ण भाग के बारे में बातचीत जारी रही। रूसी डिप्लोमेट ने कहा कि ईरान, रूस, चीन और तीन यूरोपीय देशों के वार्ताकारों ने सोमवार को मसौदे के संवेदनशील भाग पर बातचीत की और कहा जा सकता है कि प्रयास सफल रहा। अलबत्ता अंतिम दस्तावेज के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर आगे भी बातचीत करने की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित अमेरिकी अधिकारी बयान दे चुके हैं कि वार्ता में प्रगति हो रही है, लेकिन समझौते के लिए समय सीमित है।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमलावर सऊदी गठबंधन के युद्धक विमानों ने यमन के सना प्रांत पर भीषण बमबारी की है। अल मसीरा टीवी चैनल ने रिपोर्ट दी है कि हमलावर गठबंधन के युद्धक विमानों ने सना प्रांत के जिला सबइन के नहदैन और अलहफा क्षेत्रों को तीन बार हमलों का निशाना बनाया। सना प्रांत के जिला सनहान का जरबान इलाका भी कई बार सऊदी हमलों का निशाना बना। सऊदी गठबंधन ने हालिया दिनों में यमन के विभिन्न क्षेत्रों पर कई बार बमबारी की है। इसी मध्य सना सरकार के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को हालिया दिनों में हमलावर सऊदी इमाराती गठबंधन के हमले तेज होने के बारे में एक पत्र लिखा है। अलमयादीन टीवी की रिपोर्ट के अनुसार सना सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपने इस पत्र में लिखा है कि यमन की रक्षक सेनाएं देश की रक्षा का जायज और कानूनी हक सुरक्षित समझती हैं। यमन के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करे।
यमन ने हमलावर सऊदी अरब गठबंधन में शामिल देशों को खबरदार किया है कि वे अपने हरकतों से बाज आ जाएं, वरना उन्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि जवाबी हमले के तौर पर यमन की सेना और स्वयंसेवी फोर्सेज ने हालिया दिनों जो कार्रवाई की वो उनकी ताकत का बहुत छोटा सा भाग है। यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद ने एक बयान जारी करके सऊदी अरब और इमारात के काफी भीतर अंजाम पाने वाले हमले का हवाला देते हुए कहा है कि यमनी तूफान दो नाम का यह सैन्य ऑपरेशन अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल रहा। सर्वोच्च राजनीतिक परिषद ने अपने बयान में कहा कि हमलावर दोनों देशों के हाथों हालिया दिनों यमन में किए गए जनसंहार के जवाब में यमनी तूफान दो ऑपरेशन किया गया, जिसमें सऊदी अरब और इमारात में काफी भीतर के इलाकों को निशाना बनाया गया।
सीरिया के उप विदेश मंत्री ने अपने देश के विरुद्ध अमरीका के अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि सीरिया की जनता को आर्थिक आतंकवाद का सामना है। अलमयादीन टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के उप विदेश मंत्री बशार जाफरी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद में सीरियाई राष्ट्र के विरुद्ध पश्चिम के अत्याचारपूर्ण नीतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जोर जबरदस्ती की कार्रवाई आर्थिक आतंकवाद में बदल गई है, जिसका निशाना सीरियाई जनता है। सीरिया के उप विदेश मंत्री ने कहा कि इन जोर जबरदस्ती की कार्रवाइयों ने सीरियाई नागरिकों की जिंदगी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और हर प्रकार के विकास और प्रगति का हक छीन लिया है। बशार जाफरी ने बल दिया कि सीरिया के 44 विदेशी संस्थाओं और संगठनों को इस देश में काम करने की इजाजत दे रखी है और इन संस्थाओं के लिए युद्ध और संकट के नकारात्मक परिणाम कम करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए काम करना आसान बना दिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के अटकलों का पटाक्षेप होने के बाद राम मंदिर के मुख्य पुरोहित आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अच्छा हुआ योगी यहां से चुनाव नहीं लड़े, वरना उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता। दास ने दावा किया कि उन्होंने योगी को सलाह दी थी कि वो अयोध्या के बजाय गोरखपुर से ही चुनाव लड़ें। पिछले 30 वर्षों से राम मंदिर के मुख्य पुरोहित का दायित्व निभा रहे दास ने कहा कि ये अच्छा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि बेहतर होगा कि वो अयोध्या के बजाय गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ें। दास ने कहा कि वो महसूस करते हैं कि भाजपा राम मंदिर को कभी अपने एजेंडे से बाहर नहीं निकालेगी।
भारत नियंत्रित कश्मीर से बार बार खबरें आ रही हैं कि मीडिया सेंसरशिप भयानक रूप लेती जा रही है। हाल ही में कश्मीर प्रेस क्लब का मुद्दा गरमाया और अंडर ट्रेनिंग पत्रकार सज्जाद गुल की गिरफ्तारी समेत अनेक घटनाएं हो रही हैं जिन्हें लेकर विश्व स्तर पर चिंता पाई जाती है। बीबीसी की रिपोर्ट है कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार की ओर से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के बाद मीडिया पर पाबंदियों की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कई पत्रकारों को आमतौर पर उनके काम के संदर्भ में गिरफ्तार किया जाता रहा है, हिरासत में लिया जाता रहा और पूछताछ के लिए तलब किया जाता रहा। कई पत्रकारों के घरों पर छापे मारे गए और पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और शांति जैसे विषयों को बहाना बनाकर पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की है।
पाकिस्तान में बसे हिंदुओं की संस्था पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने भारत की मोदी सरकार को पत्र भेजकर प्रस्ताव रखा है कि हिंदू, मुसलमान और सिख तीर्थयात्रियों को हवाई सेवा के जरिए आने दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है और कई साल से संबंधों पर जमी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का प्रस्ताव एक अच्छी पहल माना जा रहा है।
भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,55,874 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,97,99,202 हो गई है। भारत में लगातार पिछले 5 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 3 लाख से अधिक सामने आ रहे थे। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 614 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,90,462 हो गई है।
अमरीकी युद्ध मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि उसने अपने 8,500 सैनिकों को हाई अलर्ट कर दिया है क्योंकि उन्हें पूर्वी यूरोप में नेटो के समर्थन में तैनात किया जा सकता है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अभी सैनिकों को विदेश भेजने का फैसला तो नहीं किया गया, लेकिन अगर नेटो ने अपने रैपिड एक्शन फोर्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया तो इन सैनिकों को विदेश भेजा जाएगा। नेटो के रैपिड एक्शन फोर्स में 40,000 सैनिक हैं। किर्बी ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के आदेश से 8,500 सैनिक हाई अलर्ट स्थिति में हैं, जो 5 से 10 दिन के अंदर विदेश जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रवक्ता ने इसके साथ ही कहा कि कूटनीतिक विकल्प अब भी मौजूद है और मॉस्को से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन लगता है कि रूस तनाव कम करने का इरादा नहीं रखता। उधर व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस कभी भी यूक्रेन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई शुरू कर सकता है।
रूसी रडार सिस्टम ने हालिया दिनों के दौरान रूसी सीमाओं के निकट 56 ड्रोन विमानों और जासूस विमानों का पता लगाया है। तास न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 दिन के दौरान रूसी सीमाओं के निकट 40 जासूस और 16 ड्रोन विमानों की उड़ानों का पता लगाया गया, जिसके बाद रूसी युद्ध विमानों ने एक्शन लिया और 2 बार हवाई सीमाओं की रक्षा के लिए कार्रवाई की। रूस की हवाई सीमा के निकट की जाने वाली उड़ानों से ऐसी हालत में पता चला है कि अमरीका यूक्रेन पर रूस के संभावित हमलों का दावा करके रूस के विरुद्ध माहौल को जहरीला करने का प्रयास कर रहा है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा। दोस्तों राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री ने आगामी चुनाव में भाग न लेने की बात कही है। फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है एक आदमखोर सैनिक और भारत में घटने लगे हैं कोरोना के केस। दोस्तों इन विषयों पर हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के दबाव में अपने पद से त्याग पत्र देने वाले लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस देश के आगामी संसदीय चुनाव में भाग न लेने की बात कही है। एक रिपोर्ट लेकर उपस्थित हैं सैयद मीसम।
लेबनान के फ्यूचर मूवमेंट के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया है और आगामी संसदीय चुनावों में अपनी पार्टी के भाग नहीं लेने का आह्वान किया है। साद हरीरी ने कल 24 जनवरी को बेरूत में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैंने आगामी चुनावों में उम्मीदवार नहीं बनने का फैसला किया है और कोई भी उम्मीदवार फ्यूचर मोमेंट के निशान पर चुनावों में नहीं उतरेगा। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बंद करने की घोषणा के बाद संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए निकल पड़े। साद हरीरी के इस फैसले के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक उनका अपना राजनीतिक रिकॉर्ड भी है, लेकिन मौजूदा हालात में इसके चार मुख्य कारण हैं। पहला, हरीरी हमेशा लेबनान की बाहरी शक्तियों और विशेष रूप से सऊदी अरब पर निर्भर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में हरीरी और सऊदी अरब के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं रहे हैं। नवंबर 2017 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हरीरी को रियाज बुलाकर नजरबंद कर दिया था और उन्हें लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। ये घटना सऊदी अरब और साद हरीरी के बीच विवाद की शुरुआत की अहम वजह रही, क्योंकि हरीरी ने बेरूत लौटने के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया था और सऊदी क्राउन प्रिंस के दबाव में अपने इस्तीफे की बात भी स्वीकार की थी। दूसरा कारण यह है कि नवंबर 2017 में सऊदी अरब के दबाव में इस्तीफा देने और दिसंबर 2019 में कैबिनेट के गठन में नाकामी के कारण साद हरीरी ने लेबनान के राजनीतिक क्षेत्र में और फ्यूचर मोमेंट की संरचना में अपना प्रभाव खो दिया है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि फ्यूचर मोमेंट ने अपनी राजनीतिक अखंडता को खो दिया है और एक आंतरिक राजनीतिक विभाजन का शिकार है। तीसरे ये कि हरीरी आगामी संसदीय चुनावों में भाग लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। सऊदी अरब और फारस खाड़ी के देशों के शेख हरीरी के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थकों में से थे, जो उनके प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं, इसलिए वे हारे हुए घोड़े पर दांव नहीं लगाना चाहते हैं। चौथे ये कि हरीरी लेबनान की मौजूदा समस्याओं से पूरी तरह से अवगत हैं, खासकर आर्थिक समस्याओं से। दूसरी ओर उन्हें ये पता है कि कम से कम कुछ समय के लिए ही सही उनका प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं है और चुनाव के बाद वो सौदेबाजी की स्थिति में नहीं है, यहाँ तक कि उनमें मौजूदा आर्थिक समस्याओं को कम करने की भी क्षमता नहीं है। इन कारणों से साद हरीरी ने लेबनान में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को स्थगित करना पसंद किया ताकि वो किसी अन्य स्थिति में और बेहतर स्थिति में देश में लौटने में सक्षम हो सकें।
फ्रांस में एक ऐसे आदमखोर सैनिक को गिरफ्तार किया गया है जो अफगानिस्तान में भी तैनात रह चुका है। विस्तार से बता रहे हैं अहमद अब्बास।
अब तक हमने अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या अमेजन के जंगलों में रहने वाले आदमखोर कबीलों के बारे में किताबों में पढ़ा या फिल्मों में ही देखा था, लेकिन आदमखोरी की घटना ने सबको हिला दिया है। फ्रांस में आदमखोर जेरेमी रेम्बो नाम का सैनिक तुलूस शहर के अस्पताल से भाग निकला और उसने 72 साल की एक महिला को खाने की नीयत से उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसे कत्ल करने में वो कामयाब नहीं हो सका और महिला खुशकिस्मती से बच गई। महिला ने बताया कि उसने रॉड से मुझ पर कई वार किए, वो मुझे कत्ल करना चाहता था लेकिन लोगों ने मुझे बचा लिया। पुलिस की बड़ी मेहनत के बाद रेम्बो गिरफ्तार कर लिया गया है। रेम्बो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। 2013 में उसने एक किसान पर वहशियाना हमला किया था। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इस व्यक्ति की तस्वीरें जारी करके खासतौर पर उम्र दराज लोगों से कहा था कि वो अकेले घर से ना निकलें। इस स्थिति से स्थानीय लोगों में काफी खौफ फैल गया था और लोग अकेले बाहर निकलने से घबरा रहे थे।
En France, on en a une demi-douzaine connue.
स्थानीय नागरिक का कहना था कि फ्रांस में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई तो हैं, मगर ये घटना बिल्कुल अजीब है, जो मनोवैज्ञानिक समस्या का नतीजा है। आदमखोर जेरेमी रेम्बो 5 साल तक फ्रांस की सेना में रहा और 2010 में 1 साल तक वो अफगानिस्तान में तैनात रहा। रेम्बो की गिरफ्तारी की खबर कोरोना और राष्ट्रपति चुनाव से ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। पेरिस के 11वें जोन में एक इमारत स्थित है जो आदमखोर रेस्तरां के नाम से मशहूर है। रेम्बो की गिरफ्तारी के बाद कई दिन से इस रेस्तरां को बंद कर दिया गया है। लोगों में इस घटना के बाद बहुत खौफ पाया जाता है और लोगों को डर है कि कहीं इस तरह का कोई और भी मरीज मौजूद न हो। पेरिस से IRIB के लिए शहसवार हुसैनी की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। भारत से एक अच्छी खबर यह है कि वहां पर कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। नई दिल्ली से शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में काफी कमी आई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं, जो सोमवार की तुलना में 50,000 से अधिक कम हैं। परंतु चिंता की बात यह है कि 24 घंटे में 614 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। भारत में इस समय 22,36,842 कोरोना संक्रमितों का उपचार हो रहा है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 15.52% है। पिछले 24 घंटे में 2,67,753 कोरोना रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि इस वैश्विक महामारी में अब तक कुल 4,90,462 कोरोना रोगी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है और अब तक 162 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारत के 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरोना के रोगियों और हताहतों की संख्या सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,760 नए मामले सामने आए हैं और 30 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली में पिछले 10 दिनों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 20% कम हुआ है और ओमिक्रॉन के हल्के लक्षण पाए जाते हैं। उनके अनुसार 15 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 30% था, जो आज घटकर 10% हो गया है। انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو پرتیبند لگائے گئے ہیں وہ شیگر ہی اٹھا لیے جائیں گے۔
ہم سب مل کے، میں ایل جی صاحب، ہم سب مل کے جلدی سے جلدی، جتنی جلدی ہو سکے گی، ہم ان ریسٹرکشنز کو ہٹائیں گے۔
اس سے پورو دلی سرکار نے ویکینڈ کرفیو اور آڈ ایون پرتیبندوں کو ہٹانے کا نرنے لیا تھا، لیکن دلی کے اپ راجیپال نے کرونا کی استھتی کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار کے اس پرستاؤ کو خارج کر دیا تھا۔ ویپاریوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان پرتیبندوں سے انہیں ویپار میں کافی کھتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
بہت نقصان ہے، کیونکہ اب دو دن اور تین دن مارکیٹ کھلتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کیا ہم سیل کریں گے، کیا سیلری دیں گے، کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے۔
دلی سرکار نے ایک بار پھر پرتیبندوں کو ہٹانے کا وعدہ کیا ہے، پرنتو چکتسا وشیشگیوں کا کہنا ہے کہ کرونا کے نئے معاملوں میں کمی آنے پر ہی ایسے وعدوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم سنا۔ کارکرم کیسا لگا اس بارے میں آپ اپنے وچار ہمیں اوشیہ لکھ بھیجیے۔ اب آپ سنیں گے ساپتاہک کارکرم قرآنی قصے، کنتو اس سے پہلے پیش ہے ایک انیہ کارکرم، فلسطینی مدعا اور سمادھان۔
فلسطینی مدعا اور سمادھان۔
دوستو، کارکرم میں فلسطینی مدعا اور سمادھان کے لیے ایران کے پرستاؤ کے بارے میں چرچا کریں گے۔ مریم مردادی اور سید مسم کا سلام سویکار کیجیے۔
وشو ورچسواد نے امریکہ کے پورو راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے کال میں سینچری ڈیل نامک یوجنا کو لاگو کیا تھا۔ اس کا ادیشیہ فلسطین کے بارے میں جاری شانتی پرکریا کو سماپت کرتے ہوئے روڑی وادی عرب شاسکوں کے ساتھ اویدھ زائنی شاسن کے سمبندوں کو سامانیہ بنانا تھا۔ کارکرم میں ہم فلسطین کے بھوشیہ کے بارے میں اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کے پرستاؤ سے اوگت کروائیں گے۔
ورشٹھ نیتا کے پرستاؤ میں سمست فلسطینیوں کی موجودگی سے لوکتانترک ڈھنگ سے فلسطین سمسیا کا سمادھان کرنا ہے۔ اس کے اترکت سشستر پرتیرودھ پرکریا کا جاری رہنا بھی اسی یوجنا کا بھاگ ہے، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے پورک ہیں۔ اس بات پر دھیان دیا جانا چاہیے کہ اسلامی گنتنتر ایران نے فلسطین سنکٹ کے سمادھان کے لیے دو اپائے سجھائے ہیں جو دونوں ہی ایک دوسرے کے پورک ہیں، جنمت سنگرہ اور پرتیرودھ۔
سارے فلسطینیوں کی بھاگیداری سے جنمت سنگرہ کرانا کوٹنیتک اپائے ہے، جس کے ساتھ ہی پرتیرودھ کو بھی وکلپ کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ ایران کا یہ ماننا ہے کہ فلسطین سنکٹ کے سمادھان کے لیے کیول کوٹنیتک مارگ کو اپنانا پریات نہیں ہے۔ جب تک فلسطینیوں کی اپستھتی سے جنمت سنگرہ کا آیوجن نہیں ہوتا، اس سمے تک اویدھ زائونی شاسن کے ورودھ پرتیرودھ ضروری ہے۔
دوستو، اس سمے فلسطین سنکٹ کے سمادھان کے بارے میں کھیتریہ ایوم انتراشٹریہ استر پر دو یوجنائیں کام کر رہی ہیں۔ ایک سینچری ڈیل ہے، جس کا ادیش فلسطینیوں کے ادھیکاروں کو نشٹ کر کے اویدھ زائونی شاسن کے ساتھ عرب اور اسلامی دیشوں کے سمبندوں کو سامانیہ کروانا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسی یوجنا کے سمانانتر پرتیرودھ کو جاری رکھنا ہے۔ फिलिस्तीनियों के बारे में अन्य षड्यंत्रकारी योजनाओं की तुलना में ईरान की जनमत संग्रह कराने की योजना काफी हद तक तार्किक लगती है।
इसके अतिरिक्त प्रतिरोध के माध्यम से फिलिस्तीन की अत्याचार ग्रस्त जनता का समर्थन किया गया है। पिछले कई दशकों में घटने वाली ऐतिहासिक घटनाओं के बाद फिलिस्तीनियों की प्रतिरोध प्रतिक्रिया सामने आई है। अवैध ज़ायनी शासन की वर्चस्ववादी एवं अत्याचारी पहचान के कारण ही फिलिस्तीनियों विशेषकर हमास ने सशस्त्र प्रतिरोध के लिए कदम आगे बढ़ाया है।
फिलिस्तीनियों का प्रतिरोध मूल रूप से अत्याचार, अतिक्रमण, धर्म दुश्मनी और अतिक्रमण के कारण अस्तित्व में आया है, जिसका मुख्य लक्ष्य फिलिस्तीनियों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करना है। फिलिस्तीनियों की छीनी गई भूमियों को पुनः वापस लेना, फिलिस्तीनी संप्रभुता की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्रोतों को लूटने से बचाना और स्वेच्छा से अपने भविष्य का निर्धारण ही फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध का स्पष्ट उद्देश्य है।
दूसरी ओर फिलिस्तीन संकट के समाधान के लिए ईरान का प्रस्ताव केवल सैन्य विकल्प पर ही निर्भर नहीं है। ईरान ने कूटनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक एवं न्यायपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है। उनके प्रस्ताव के अनुसार सारे फिलिस्तीनी एक रेफरेंडम में भाग लेकर फिलिस्तीनी देश के लिए अपने दृष्टिगत व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। रेफरेंडम में भाग लेने वालों में वे फिलिस्तीनी भी शामिल हों जिन्हें फिलिस्तीन से निकाल दिया गया है और वे दूसरे देशों में रह रहे हैं।
इसके अतिरिक्त इस रेफरेंडम में सारे फिलिस्तीनी शरीक हैं, चाहे वे मुसलमान हो, यहूदी हो या फिर ईसाई। इस तरह से जनमत संग्रह कराने के बाद जिस प्रकार की शासन व्यवस्था का चयन किया जाए उसी के अनुरूप सरकार बने, ऐसे में फिलिस्तीन में शांति की स्थापना हो सकती है। फिलिस्तीन के बारे में इस्लामी गणतंत्र ईरान का प्रस्ताव पूर्ण रूप से व्यवहारिक और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को अपने भीतर लिए हुए है।
फिलिस्तीन के बारे में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का विचार बिल्कुल ही स्पष्ट है। उनका मानना है कि गस्प किए गए इस्लामी क्षेत्रों विशेषकर फिलिस्तीन की स्वतंत्रता प्रतिरोध के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि इस समय जो लोग अवैध ज़ायनी शासन का संचालन कर रहे हैं वे केवल शक्ति की भाषा को ही समझते हैं। इस प्रकार के लोगों से पहले चरण में उन्हीं की भाषा में बात की जाए, तभी उनका नतीजा निकलेगा।
पिछले कुछ दशकों का अनुभव बताता है कि इस दौरान इस अवैध शासन ने किसी भी नैतिक, मानवीय या अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन नहीं किया। उसने खुलकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। ऐसे शासन से केवल शक्ति की भाषा में ही बात की जानी चाहिए। ईरान का ये मानना है कि फिलिस्तीनियों का कड़ा प्रतिरोध ही फिलिस्तीन में जनमत संग्रह कराने की भूमिका प्रशस्त करेगा, जिसके बाद हर धर्म और जाति से संबंध रखने वाला फिलिस्तीनी इसमें भाग लेकर अपने भविष्य का निर्धारण कर सकता है।
प्रतिरोध का विकल्प ही अवैध ज़ायनी शासन का विनाश करके इस बात का कारण बनेगा कि फिलिस्तीनी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सरकार का चयन कर सके। फिलिस्तीन के एक विशेषज्ञ मोहसिन फायजी का मानना है कि फिलिस्तीन के बारे में ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का प्रस्ताव किसी भी स्थिति में जनमत संग्रह और प्रतिरोध किसी के भी मार्ग की बाधा नहीं है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट ढंग से हर प्रकार की हिंसा और यहूदियों को नदी में फेंके जाने जैसी बातों का खंडन किया है।
जनमत संग्रह एक कूटनीतिक मार्ग है, जिसका उल्लेख करने से पता चलता है कि ईरान चाहता है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र अपने अधिकारों को हासिल कर सके। दूसरी ओर फिलिस्तीनियों के विरुद्ध ज़ायोनी शासन के अत्याचारों और उनकी हिंसक कार्रवाइयों को देखते हुए वरिष्ठ नेता प्रतिरोध के पक्षधर हैं। जनमत संग्रह का मुद्दा पेश करने का मुख्य लक्ष्य पश्चिम के मानवाधिकारों और लोकतंत्र के हितैषियों के दावेदारों को उन्हीं के जाल में फंसाकर इन दावेदारों के असली चेहरे को दुनिया के सामने पेश करना है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में जनमत संग्रह के पंजीकरण की योजना का इंदराज मीडिया की चुप्पी के साए में हुआ। इस संबंध में पश्चिमी और अरब संचार माध्यमों ने अपने आप को इससे काफी हद तक अलग रखा, क्योंकि ये जनमत संग्रह सारे फिलिस्तीनियों की भागीदारी से उन्हें अपने भविष्य के निर्धारण का अवसर प्रदान करता है। वास्तव में ईरान की योजना का मुख्य लक्ष्य फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर बल देना है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। कुरानी किस्से।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, अरब जगत में आमिर बिन मालिक नाम का एक व्यक्ति था। उसकी उपाधि अबू बरा थी। वो बनी आमिर कबीले का एक मशहूर बहादुर सरदार था। वो तलवार चलाने में बहुत माहिर था। इसी वजह से उसे मुल्ला इबुल असिन्ना अर्थात तलवारों के खिलाड़ी के नाम से जाना जाता था। एक दिन उसने पैगंबर इस्लाम से मुलाकात की और कुछ उपहार पैगंबर इस्लाम की सेवा में भेंट किए। उसने पैगंबर इस्लाम की सेवा में जो उपहार भेंट किए उसमें दो घोड़े और उनसे संबंधित कुछ चीजें थीं।
पैगंबर इस्लाम ने उसके उपहार को वापस कर दिया और उसे भी लोक परलोक में सफल जीवन प्रदान करने वाले इस्लाम धर्म की ओर आमंत्रित किया। अबू बरा ने पैगंबर इस्लाम के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बजाय उसे दूसरे समय पर टाल दिया और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कुछ साथियों को इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नजद क्षेत्र भेजने का अनुरोध किया। पैगंबर इस्लाम ने उसके जवाब में फरमाया कि मुझे नजद के लोगों की मक्कारी साजिश और दुश्मनी से भय है कि कहीं प्रचारकों को कोई नुकसान न पहुँच जाए। मैं रजिय त्रासदी की पुनरावृत्ति से भयभीत व चिंतित हूँ कि उसमें कुरान की शिक्षा देने वाले और कारी मारे गए।
रजी त्रासदी इस प्रकार थी कि पवित्र नगर मक्का के निकट खजीमा नाम का एक कबीला रहता था। इस कबीले के अजल और कारा नाम के दो गुटों के प्रतिनिधि पैगंबर इस्लाम की सेवा में हाजिर हुए। उन्होंने इस प्रकार कहा कि हे ईश्वरीय दूत, महान ईश्वर ने हमारे दिलों को इस्लाम की ओर मोड़ दिया है। हमारे क्षेत्र के लोग भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपने कुछ अनुयायियों को आप भेज दीजिए ताकि हमारे कबीले में इस्लाम का प्रचार और प्रसार हो सके और लोगों को कुरान तथा हराम हलाल की शिक्षा दी जा सके।
पैगंबर इस्लाम ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और मरसद बिन अभी मरसद के नेतृत्व में 7 व्यक्तियों पर आधारित एक गुट को उनके साथ भेज दिया। परंतु जब वे पवित्र नगर मदीना से दूर हो गए और रजी नामक स्थान पर पहुंचे तो खाजिमा कबीले के जो लोग पैगंबर इस्लाम के पास गए थे और 7 लोगों को अपने साथ लेकर आ रहे थे, उन लोगों ने अपनी असली मंशा व नीयत जाहिर कर दी और कहा कि कुरैश से हमें जो उपहार मिले हैं उसके बदले में हम तुम्हें उनके हवाले करेंगे। ये सुनना था कि इस्लाम और कुरान की शिक्षा देने के लिए जो लोग जा रहे थे उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और वे हैरान व हतप्रभ रह गए। वे जंग के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने बहादुरी के साथ जंग की और 7 में से 5 शहीद हो गए और 2 को बंधक बना लिया गया और उन्हें कुरैश के अनेकेश्वरवादियों के हवाले कर दिया। कुरैश के अनेकेश्वरवादियों ने भी बद्र नामक युद्ध में मारे गए काफिरों व अनेकेश्वरवादियों का प्रतिशोध लेने के लिए उन लोगों को शहीद कर दिया।
इसी कारण पैगंबर इस्लाम नजद क्षेत्र में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को नहीं भेजना चाह रहे थे, किंतु अबू बरा ने पैगंबर इस्लाम को आश्वस्त करके ये कहा कि इस्लाम का प्रचार व प्रसार करने वाले पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पैगंबर इस्लाम और दूसरे लोगों को अधिक विश्वास में लेने के लिए उसने कहा कि जब तक इस्लाम का प्रचार व प्रसार करने वाला गुट वापस नहीं आ जाता तब तक मैं मदीने में ही रहूंगा, और वो मदीने में ही रहा।
जब ये देखा तो पैगंबर इस्लाम ने अपने कुछ अनुयायियों व पवित्र कुरान के कारियों को मुंजर बिन अम्र के नेतृत्व में नजद रवाना कर दिया, यहाँ तक कि वे लोग बेर माउना नामक क्षेत्र में पहुंच गए। उस क्षेत्र में आमिर बिन तुफेल नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसे बनी आमिर कबीले का सरदार समझा जाता था। जो लोग इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए गए थे उनकी हत्या के लिए आमिर के कबीले वालों ने उसे उकसाया। इस बात को लेकर कबीले में मतभेद हो गया और उसके बाद आमिर बिन तुफेल बनी सलीम कबीले के पास गया और वहाँ के लोगों को अपने साथ मिला लिया और उन लोगों ने मुसलमानों को घेर लिया। जो मुसलमान इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए गए थे उनमें से अधिकांश शहीद हो गए।
हालांकि उन लोगों ने अनेकेश्वरवादियों का डटकर मुकाबला किया था। जो मुसलमान शहीद हो गए थे, काब बिन जैद उन्हीं लोगों के मध्य घायल अवस्था में पड़ा था। उसने किसी तरह उसी घायल अवस्था में स्वयं को मदीने पहुंचाया और पैगंबर इस्लाम से सारी बात बताई। इन बातों को सुनने के बाद पैगंबर इस्लाम और दूसरे मुसलमान बहुत दुखी हुए और काफ़ी दिनों तक बेर माउना में शहीद किए जाने वाले मुसलमानों के शोक में वे लोग रहे।
आमिर बिन तुफेल के दिमाग में ये था कि एक दिन वे पैगंबर इस्लाम को शहीद कर देगा और सारे अरबों को अपना अनुयायी बना लेगा। इस विचार के साथ उसने इस्लाम स्वीकार कर लेने का चोला धारण किया और अरबद बिन कैस के साथ पवित्र नगर मदीना पहुंचा। पवित्र नगर मदीना की पतली गलियों को तय करते हुए वे दोनों पैगंबर इस्लाम की सेवा में पहुंचे। उन दोनों ने देखा कि पैगंबर इस्लाम एक जगह अकेले बैठे हैं। उनकी प्लानिंग ये थी कि आमिर बातचीत आरंभ करे और पैगंबर इस्लाम को बातचीत में व्यस्त कर दे ताकि अरबद पीछे पैगंबर इस्लाम पर हमला करे। आमिर ने पैगंबर इस्लाम को संबोधित करके कहा कि हे मोहम्मद, अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे क्या विशिष्टता दोगे, क्या मुझे दूसरों पर वरीयता दोगे? इस पर पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, तुम्हें भी वही श्रेष्ठता व वरीयता प्राप्त होगी जो दूसरे मुसलमानों को हासिल है اور جو حکم و آدیش ان کے بارے میں لاگو ہے وہی تمہارے بارے میں لاگو ہوگا۔ عامر نے جب پیغمبر اسلام کا اتنے صاف شبدوں میں جواب سنا تو اسے بہت کرودھ آیا، پرنتو اس نے اپنے کرودھ کو دبایا اور اسے ظاہر نہیں کیا، اور اس نے اپنے آپ کو شانت دکھانے کا پریاس کرتے ہوئے کہا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے اپنا اتراधिकारी بناؤ گے؟ اس کے جواب میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، اتراधिकारी केवल महान ईश्वर बनाता है, ये मेरा काम नहीं है۔ عامر اس پرکار کی باتوں میں الجھا کر سمے گزارنا چاہ رہا تھا تاکہ اس کا ساتھی اربد پیچھے سے پیغمبر اسلام پر حملہ کر سکے۔
بہرحال عامر نے ایک بار پھر پیغمبر اسلام سے کہا کہ کم سے کم مجھے گاؤں والوں کا شاسک بنا دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے اس کا بھی نکاراتمک اتر دیا، پرنتو وہ اسی پرکار اپنی مانگوں پر آگرہ کرتا جا رہا تھا۔ عامر نے اس بار تیز سور میں کہا کہ آخر اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تم مجھے کیا دو گے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ شمتا ہونے کی استھتی میں میں تمہیں ایک سینہ دوں گا جس سے تم اسلام کے دشمنوں سے لڑ سکو۔ اس پر عامر نے کٹاکش بھرے انداز میں کہا کہ ابھی بھی میرے نینترن میں سینہ ہے، مجھے تمہاری سینہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہی چھن و سمے تھا جب اربد اپنی شیطانی سازش کو ویوہارک بنانے کے لیے سوئم کو پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا رہا تھا اور اس کے شیطانی کرتے کو عملی کرنے کے لیے استھتی پوری طرح انکول ہو چکی تھی۔
عامر پیغمبر اسلام سے سوال پوچھتا تھا اور پیغمبر اسلام بڑی نمرتا و شالینتا سے اس کا جواب دیتے تھے۔ اربد نے میان سے تلوار نکالنی چاہی، اس نے بڑی کوشش کی پرنتو تلوار میان سے نہ نکلی۔ عامر نے جب یہ حالت دیکھی تو ڈر گیا اور اس نے اشارے سے اربد کو سمجھانے کا پریاس کیا کہ جلد سے جلد پیغمبر اسلام کا کام تمام کر دیں، پرنتو پیغمبر اسلام کی تیز نظروں سے اس کا اشارہ پوشیدہ نہ رہ سکا اور پیغمبر اسلام عامر کی منشا سمجھ گئے اور اسی کشن وہ کنارے ہٹ گئے اور کہا، ہے ایشور، ان سبوں نے میرے ساتھ دھوکا اور چھلاوا کیا ہے، تو جس طرح چاہے میری ان کے شڑیانتر سے رکشہ کر۔ عامر ڈر کر بھاگنے لگا۔ جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس نے پیغمبر اسلام سے اس پرکار کہا، ہے محمد، میں اس سمے جا رہا ہوں، پرنتو جان لو کہ میں بہت ادھک سینکوں کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا۔ اس پر پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا، ایشور کی اچھا سے تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے۔
کچھ سمے نہیں گزرا تھا کہ عامر ایک بیماری میں گرست ہوا اور جلد ہی مر گیا۔ اس موقع پر پوتر قرآن کے سورہ رات کی 10ویں اور 11ویں آیتیں نازل ہوئیں، جس میں مہان ایشور کہتا ہے کہ ایشور کے لیے برابر ہے چاہے کوئی بات کو دل میں چھپائے یا کھل کر کہے، اور اس کے لیے برابر ہے چاہے کوئی رات کے اندھیرے میں چلے یا دن کو۔ ہر انسان کی رکھوالی اور اس کی سرکشا کے لیے اس کے آگے اور پیچھے سے رکشک نیوکت کیے گئے ہیں جو ایشور کے آدیش سے اس کی رکشا کرتے ہیں۔ بے شک ایشور کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے، اور جب ایشور کسی قوم پر عذاب و پرکوپ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ایشور کے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔
پوتر قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مہان ایشور کی درشتی میں سب برابر ہے، چاہے کوئی اپنے دل کی بات زبان سے کہے یا نہ کہے، وہ سرو جاتا ہے۔ اس کے لیے ودیت و نہیت یعنی ظاہر باطن میں کوئی انتر نہیں ہے، اس کے سمیپ ظاہر و باطن کا کوئی ارتھ ہی نہیں ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ وہ جس طرح ہر چیز کو دیکھتا ہے اسی طرح ہر سجیو کے اندر یعنی اس کے دل کی بات کو بھی دیکھتا و جانتا ہے۔ یہ انسان ہے جو دن یا روشنی میں آسانی سے دیکھتا ہے، پرنتو اسے رات یا اندھیرے میں نہیں دکھائی دیتا، یا دیکھتا ہے تو بڑی مشکل سے، اور وہ بھی کسی سہارے سے۔ انسان کی طاقت اور کشمتا سیمت ہے، اور ایک کشمتا بھی انسان کے پالنہار نے اسے پردان کی ہے، جبکہ مہان ایشور کی کشمتا اسیمت ہے۔ دوسرے شبدوں میں، انسان مہان ایشور کی کشمتا و طاقت کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا۔
بہرحال اگر انسان اس آستھا کے ساتھ جیون گزارے کہ مہان ایشور نہ کیول اسے بلکہ اس کے کرموں اور نیت سے بھی پوری طرح سے اوگت ہے، تو اس کے آچرن میں بنیادی پریورتن اتپن ہو جائے گا۔ دوستو، آج کے کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، اور اب سمے ہو چکا ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ ودیش منتری کا کہنا ہے کہ امریکہ سے سیدھی وارتا کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ وینا وارتا میں پرگتی کے اشارے مل رہے ہیں۔ یمن پر سعودی گٹھ بندھن کے حملے تیز، یمن نے حملہ واروں کو کیا سچیت۔ رام مندر کے مکھیہ پروہت کا کہنا ہے کہ اچھا ہوا یوگی ایودھیا سے چناؤ نہیں لڑے۔ دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو سدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا۔ کارکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں ایوم پرتکریاؤں سے ہمیں اوش اوگت کرائیے گا۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.